कौन सा हृदय? कृष्ण प्रेम में विभावित जिनका हृदय है उन्हीं को चोरी करेगा, वही उनके लिए मार्ग। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे बेकार की चीजों से उनका कोई भी मतलब नहीं है। लेकर के भगे और पीछे से गोपियां भगी। उस समय कोई रोटी बना रही थी तो रोटी तवा पर रख करके चल पड़ी। कोई बच्चों को खिला रही थी दूध हो, बस हाथ में सीप रह गया। पहले चम्मच नहीं होता था, सीप सीप से लोग सीतुहे कहा था, बस वो लेकर हाथ में रह गया। चल पड़ी, पति को परवेशन कर रही थी तो वह परवेशन करते ही छोड़ करके चल। कोई संज्ञान अर्थात दलिया बना रही थी तो दलिया फूट रहा था, अब तैयार होने वाला ही था, बस छोड़ करके चल। कोई अंजन लगा रही थी तो बस एक आंख में जो अंजन लगा दिया है वो लग गया और ऐसे करते ही वो चल पड़े। जो जिस स्थिति में थी वैसे ही चल पड़े। कृष्ण देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कमर का आभूषण गले में, गले का आभूषण सिर पर, सिर का आभूषण पैरों में, इस प्रकार से ये प्रेम है। जब तक नहीं लौट आएंगे तब तक नहीं लौटेंगे, ये नित्य सिद्धों का भाव है, अरागात्मिक जनों का। पद्म जी जो साधक है उसको लोभ होने पर ये सब सुन करके लोभ होगा इनके प्रति, तो उसके लिए जो साधन है उसको करेगा, उसी का नाम है रागम। इसलिए व्यास जी ने अथवा सुखदेव गोस्वामी ने अथवा सनातन गोस्वामी ने अथवा हमारे परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को ये सब सुना रहे। यदि किसी को लाखों लाखों लोगों में से उस प्रेम के लिए ऐसी स्थिति हो जाए, इसके लिए सुना रहे हैं। तो वो अपने उर्मी, उर्मी माने होता है हवा के झोंकों से लहरें, छोटी छोटी लहरें, बड़ी बड़ी समुद्र में उर्मी हुआ जाए यहाँ पर होती है धीरे 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 धीरे, इसको कहते हैं संचारी भाव। उर्मी माने क्या? समुद्र से उठकर के समुद्र में या नदी में से उठकर के समुद्र में या नदी में मिल जाए, उसके भाव को अलग रूप में दिखला करके नदी या समुद्र से वो भाव उठेंगे और फिर उसी में मिल करके एक। कहाँ जा रहे हैं? किनारे की तरफ। किनारा माने क्या है? स्थाई भाव। स्थाई भाव की तरफ में संचरण कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम संचरण। 33 प्रकार के भाव होते हैं। कभी कभी एक को दबा देते हैं, कभी दो मिलकर के एक होते हैं, कभी कभी एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, किसी को एक देख करके दूसरा शांत हो जाता है उसको दबा देते हैं, इस तरह से बहुत तरह के भाव। तो इस तरह से अपने उर्मी रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों में फूलों का उपहार दे रही, दे नहीं रही है नदी, गोपियां देख रही हैं, भाव नेत्र से देख रही। अथवा वृंदावन में जमुना जी सचमुच में अपने तरंग रूपी भुजा से ऐसा करती ही हैं, क्योंकि चिन्मय है ना, इसलिए ऐसा संभव। दे रही है कैसे? हृदय का वेग शांत करने के लिए, परम दीन होकर के कृष्ण के चुगल चरण जुगलों को अपने हृदय में धारण कर, इसको नीचे लगा दिया, हाथ जोड़ दिया, हाथ में पुष्प लेकर के उनके चरणों में वो कमल का उपहार दे, जिससे कि हमारा हृदय शांत हो गया। हम लोग चाहते हैं कि एक भाव भी हृदय में आए, प्रेम का एक कोई आभास भी आए किंतु आभास भी नहीं आता, और कहा उस भाव को शांत करने के लिए ये कृष्ण के चरणों में दीनता पूर्वक उपहार दे रहे हैं। अथवा सदा आलिंगन करने के लिए उनके चरणों को सदा के लिए अपनी गति रुद्ध कर रही है। हम अब नहीं जाएंगे, कहाँ जा रही थी, पति से मिलने के लिए समुद्र की तरफ में, अब उसकी धारा बदल गई, अब कृष्ण की तरफ में चलने लगी, उनको चरणों को पकड़ लिया। अजय ऐसा क्यों, ऐसा तो उचित नहीं, अजय कृष्ण के लिए ये उचित है, दूसरों के लिए अनुचित, क्यों, इसलिए कि कृष्ण सबके पति के पति हैं, प्राणपति हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, नदी हो, कोई भी हो, जिसमें चेतनता कुछ भी है वो सबके मूल पति के भी पति कृष्ण, इसलिए ये जमुना के लिए ये अन्याय है, धर्म विरुद्धि नहीं। काश्यं ते कल्पदायक देवी, इसे श्लोक में उन्होंने बताया गोपियां, गोपियों के लिए ये अनुचित नहीं, क्यों, एक तो ब्रज में रहने वाले, ब्रज में ब्राह्मणी इत्यादि नहीं, गोप कुल में जन्म, कृष्ण की स्वजातीय है, बचपन से ही कृष्ण के प्रति अर्पित हैं, इसलिए इन लोगों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शायद इसका अर्थ एक और लिया है कि पहले कृष्ण की वंशी ध्वनि और उनका रूप देख करके ऐसा विश्व ब्रह्मांड में कौन सी नारी है जो मुग्ध न हो जाए, और उसमें भी गोपियां उनके लिए संभव पद नहीं है, ऐसा वो जरूर मुक्त हो जाए। अरे जबकि पहाड़ पर्वत नदी नाले द्विज गो द्रुम इत्यादि सभी का धर्म बदल जाता है, तो इन लोगों के लिए कौन सी चीज, जो पक्षी मनुष्यों को देख करके भाग जाते हैं, वो आंख बंद करके या एक टक कृष्ण की तरफ में देखने लगते हैं, कान से सुनने लगते हैं, चेतन प्राणी अचेतन हो जाता है, चेतन प्राणी चेतन बन जाता है, पर्वत पिघल जाते हैं, नदियां जम जाती हैं, नदी चलने वाली है ना, जंगम है, किंतु उसकी धारा तप्त होकर के बर्फ जैसा जम जाता है, और पहाड़ जो है वो
पिघलने लगते हैं,
ये कम एवं में
चरम
पहाड़ी, चरम पहाड़ी में ये सब होते हैं। इसलिए पशु पक्षियों का जी धर्म बदल जाता है तो गोपियों का बदल जाता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए जमुना के लिए ये बात भी अस्वाभाविक नहीं है। तो उस समय आलिंगन स्थगित उर्म बुजाई मुरारे, आलिंगन को स्थगित कर दिया, क्यों, पहले वो पानी बढ़ गया और वो पानी जो कृष्ण किनारे पर थे वो पानी बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया, जब यहां तक आ गया तो फिर कृष्ण जैसे के तैसे आत्माराम रूप में बैठे रहे, खड़े रहे, खड़े रहने से हुआ क्या, लज्जित हो गए, लज्जित होकर के झट उतर गए और अपने उपहार जितना था नदियों का कमल उसको लेकर के लज्जित होकर के उनके चरणों में उपहार। इसलिए पूजा भी कमल के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करनी है, कमल उनका अत्यंत प्रिय है, इसलिए नदियां अपने हृदय रूपी कमल को ही मानो अर्पण कर रही है, ये कमल कमल नहीं है, उनका ये हृदय जैसे हृदय है अनुराग रंग अत्यंत सुगंधित अत्यंत कोमल, ऐसे हृदय से ही भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रेम का रंग ही अनुराग का रंग लाल होता है। और मनो नेत्र कमल, यमुना जी अपने नेत्र रूपी कमल को ही दे रही है, हृदय रूपी कमल नेत्र रूपी कमल अर्पण करते। अथवा कमला माने लक्ष्मी, सनातन गोस्वामी विविध प्रकार के अर्थ कर रहे हैं। कमला माने लक्ष्मी, कमलोपहारा, कमला उपहारा, कमलोपहार कमला कर दिया, कमल उपहार है ना, तो आकार के साथ में ऊ मिल जाने से ओकार हो जाता है, तो कमलोपहारा, कमला उपहारा, कमला। कमला माने क्या? लक्ष्मी। अतः निज हृदय रूपी पद्म बन की लक्ष्मी जितनी शोभा थी पद्म बन की जमुना में, उस सारी शोभा को कृष्ण के चरणों में, जितने कमल थे उन सभी कमलों को कृष्ण के चरणों में उपहार के स्वरूप अपना हृदय मन नेत्र जितने भाव थे उस सब भावों को कमल के रूप में जमुना जी ने दे दिया, उनको कालिंदी जी ने दे दिया। इसलिए जमुना जी कालिंदी और मानस गंगा इत्यादि लक्ष्मी से भी, सब लक्ष्मी से भी, जो लक्ष्मी जी हैं बैकुंठ की, उनसे भी श्रेष्ठ है। वो ऐसा नहीं कर सकती। कमलोपहार, उपहार शब्द की ध्वनि गम्य अर्थ एक ये है, नदियां श्री मुरारी के मोहन वेणुगुत को सुन करके सहसा अपने समुद्र की तरफ में, जो पति के तरफ में जा रही थी, प्रयास को छोड़ दिया, त्याग कर दिया और मूर्ति धारण पूर्वक मणि मुक्ताओं से भी अधिक सुंदर श्रेष्ठ कोमल अपने भावों के अनुरूप कमल फूल को लेकर के उनके चरणों में उपहार दिया, अर्थात अपने हृदय को ही उपहार दे रही है। कहां की चीज उपहार दे रहे हैं? ब्रजभूमि की, बाहर का नहीं। एक आदमी किसी के घर में आए तो बाहर से रसगुल्ला लाओ और कोई चीज अच्छी चीज लाओ और अपने घर की उत्पन्न हुई चीज को दो, तो आनंद किसमें होगा?
घर का।
आदिन के घर की चीज उत्पन्न हुई है ब्रज की। सनातन हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मैं ब्रज में रहूंगा, अब ब्रज के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, अब ब्रज के में उत्पन्न होने वाली चीजों के द्वारा ही अपना जीवन भरण पोषण सब कुछ करता हूं। यही का ही तक्र माने मट्ठा घोल दधि, बाहर का नहीं, यहां उत्पन्न हुए कोई भी चीज हो उसी से ही कपड़ा पहनूंगा, उसी से तन ढकूंगा, इस ब्रजभूमि में ही सोऊंगा, ब्रजभूमि की उत्पन्न हुई चीजों को मैं व्यवहार करूंगा। क्यों करूंगा? इसलिए कि राधा और कृष्ण के चरणों से ये सब भूमि सिद्ध है, उसी से उत्पन्न जो कुछ है जीवन धारण करने के लिए मैं सकता, बाहर का कोई भी चीज नहीं, ये उनकी निष्ठा है। आज जमुना जी ब्रज में ये वहीं की उत्पन्न हुई चीजों को, कालिंदी जी कौन है देखने से मालूम हो रहा है ये कालिंदी पर्वत से आ रहे हैं, किंतु ये हैं कमई करला, का नाम सुना है ना, कमई कमई करला, वहां की ये बेटी है। उनकी माता का नाम कुछ है, पिता का नाम है, पति का नाम भी है, वहीं पर अभी वहां पर अभी भी विशाखा जी का एक मंदिर है, कोई कोई भक्त लोग उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये बसाना जाते समय में, बसाना जाते समय ये पड़ता है, मैं तीन चार बार वहां पर गया हूँ। तो ये वहां की बेटी है और ऊंचा गांव की एक बेटी थी, उससे बड़ी इसकी मित्रता शत्रुत्व भाव। ऊंचा गांव वाली कौन है?
ललिता।
और दोनों के बीच में चिकसौली,
चित्रा भी
विचित्र हैं वो। उसी के आसपास में सभी हैं और सबकी शादी एक ही जगह हुई है कभी। कहाँ? जाओ, आसपास में हुई है, जोगमय ने ऐसा करा है और वहीं पर एकत्रित होती है। राधा जी के राजभवन में ये सभी मिलती हैं। तो ये विशाखा जी हैं, ये बनी हुई हैं कालिंदी जी जमुना। तो ये मुरारी के चरण जुगलों को ग्रहण करती हैं, अर्थात समुद्र की तरफ में दौड़ना ही भावित होना है, नदियों का स्वभाव है। क्योंकि नदी मात्र के पति समुद्र हैं, इसलिए निज पति समुद्र की तरफ में चल रही है। मुरारी शब्द क्यों लिखा? मुर नामक कोई असुर था, उसको ध्वंस करने वाले मुर के जो अरी हैं उसको कहते हैं मुरारी। मुर कहते हैं आशक्ति को, आशक्ति मैंने संसार के प्रति आशक्ति, ये मुर है। उस मुर के अरी हैं, अपने सौंदर्य के द्वारा लोगों का आकृष्ट अपनी तरफ में आकृष्ट कर लेते हैं, संसार की आसक्ति को दूर कराते हैं। संसार की आसक्ति किसी समय भी दूर नहीं हो सकती है। परम दृष्टा निवर्तते, क्या है श्लोक? क्या
विषया
विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसापस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, हठ योग के द्वारा वैराग्य मत करो, हठ मत करो। हठ से तुम विषयों से वैराग्य तुमको नहीं होगा। निराहार सदेही रसवर्ज, क्या रसवर्जन
रसोपस्य
परम दृष्टा निवर्तते। कहते हैं कि विषयों में आकृष्टि हम लोगों की है, रुचि लग रही है, हम निराहार रहेंगे, हम विषयों की तरफ में देखेंगे ही नहीं, इसलिए हमारा ये दूर हो जाएगा, आसक्ति दूर हो जाएगी। ये आसक्ति होती है क्यों? आंखों से, शरीर से, पंच ज्ञान इंद्रियों में से कोई एक का विषय से संबंध होने पर उसमें आसक्ति होती है, इसलिए हम अपने को, अपने इंद्रियों को उन विषयों से दूर रखेंगे। इसका नाम है निराह। भोजन है रसगुल्ला, दुकान पर हम जाएंगे देखेंगे रसगुल्ला चम्मच और क्या क्या सब चीज रबड़ी ये सब, तो देख करके ही तो मुख में पानी आएगा, उसको हम जाएंगे नहीं दुकान पर। एक भी ये भी हठ योग है, हम जाएंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, आंखों से देखेंगे। जब तक हम नहीं देख रहे हैं तब तक तो वैराग्य कुछ है, और दुकान के सामने से निकले और यदि दृष्टि लग गई तो हाथ बढ़ा देंगे, पासा राबड़ी मांग लेंगे एक दुकान से, कहीं से पेड़ा मांग लेंगे, कुछ मिला लेंगे और कहीं से दूध ले लेंगे और उसमें मिला करके बड़े आराम के साथ में आंखें बंद कर पान कर लेंगे। ये तो वैराग्य है। वैराग्य कब तक के लिए? जब तक वो चीज दुर्लभ मिल नहीं गई। गोपियां कह रही हैं जिसे आपका वैराग्य कब तक के लिए, ठूठा वैराग्य आपका है, कृष्ण के लिए कह रही है। जब तक के लिए कोई स्त्री नहीं मिल जाती है तब तक आपके लिए आपका वैराग्य है। इसलिए विवाह के लिए अपनी मैया को भी अजय मैया मंगा दे छोटी सी, न क्या
मैया कर दे, अच्छी हूं तेरी पाँव।
शायद बहुत छोटी सी।
वो आप निहार, किंतु ब्रज की कोई भी लड़की आपसे विवाह करने के लिए राजी नहीं है और उसका पिता भी राजी नहीं है, तो आपका वैराग्य इसलिए ब्रज में आपका विवाह नहीं। कहते नहीं, मैं तो वैरागी हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। किंतु असल में हुआ क्या,
कोई देता ही नहीं,
कोई अपनी लड़की को उनसे देने के लिए राजी नहीं है, ना कोई ब्रज की लड़की, ये गोपियाँ कहती हैं, इसलिए आप अभी तक वैराग्य हैं। तो हम लोगों का भी वैराग्य उसी तरह से, कोई चीज अच्छी सुंदर दे दिया, अच्छा हमारी तो इच्छा तो नहीं, अच्छा रख दो, हो गई ऐसे ही। तो ये कह रहे हैं ये वैराग्य वैराग्य नहीं, ये हठ योग है। निराहारस्य, निराहार एक दिन रहेंगे, दो दिन रहेंगे, जैसे बौद्ध लोग करते हैं। बौद्ध लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा जब वृद्ध हो जाते हैं, अब मैं खाऊंगा नहीं, बस पहाड़ की तंदरा में कहते कि हमको इसमें बंद कर देना,
बड़ा पत्थर ढक
दो, तो दो चार दिन नहीं खाएंगे, पत्थर एकदम खूब ऊपर से बड़ा भारी दे दिया, पांच सात दिन तो जिस तरह से मरते जरते नहीं खाएंगे, और इसके बाद में इच्छा हुई, अब रहा नहीं जाता, अब उस पहाड़ के ढक्कन को खोल नहीं पाते, बेचारे छटपट छटपट करते हैं उसी में मर जाते। लोग कहते हैं कि बड़ा भारी बैरागी है, बैरागी नहीं, ऐसा वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। इसका सहज उपाय है, किसी का गुड़ छुड़ाना है, रसगुल्ला या पेड़ा राबड़ी, उसको खिलाओ, देखो जो गुड़ अपने आप छूट जाए, उससे उन्नत चीज होना चाहिए। हम लोगों के रूप के तरफ में आकृष्ट होते हैं, सबसे सुंदर रूप कृष्ण यदि दर्शन के लिए मिल जाए तो अपने आप ये सब दूर हो जाए। रस वर्जन रसापस्य, रस को देखकर के, रस तो कृष्ण ही है, रसो वैसा, जब तक उनका दर्शन नहीं है तब तक इसमें आकृष्टि हमारी है, और जिस समय उनका कृष्ण का, अरे देखना तो बहुत दूर रहा, यदि श्रवण भी कर लिया उनके रूप को, उनके रूप को माधुर्य को, बंसी के माधुर्य को, उनके लीला माधुर्य को, उनके परिकर वैशिष्ट को सुन लिया, तो ये सब अपने आप को विलोम नहीं, कौन थे ना आप जो कोड याद दिए विलोम, प्रभु जी ने कहा ये आंखें तुमको दे रहा हूं फिर तुम इसको रखो, उन्होंने कहा कि अब आप आंखें ले ली, जिस आंखों से देखा आपका रूप उस रूप आंखों से मैं अब संसार का रूप, सब समय आपका वही रूप हमारे हृदय में, ये है यथार्थ वैराग्य। विशेष रूप से कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा, भगवान की कथाओं में अनुराग होगा तो और सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी, ये स्वाभाविक रसवर्जन रस, रस को देख करके ही जो उत्तम इससे है, निराहार होने से नहीं होगा, एक दिन दो दिन दस दिन पांच दिन रहेगा ये तो इसलिए ये यथार्थ वैराग्य है। और जम कहते हैं जमुना मानस गंगा, ब्रजमंडल की जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र के तरफ अग्रसर नहीं होकर के मुड़ जाती हैं, किधर में, कृष्ण की तरफ मुड़ जाती हैं, कृष्ण को स्पर्श करके मनोवासना को पूर्ण करती हैं।
मुरारी शब्द
है,
मुरारी शब्द,
मुरारी माने मूर, मूर माने आसक्ति, सांसारिक आसक्तियों को अपने रूप वेणु माधुर्य इत्यादि के द्वारा, अपने लीला कथाओं के माध्यम से उनको दूर करके हटा करके और अपने मूल में हटा, इसलिए मूर के अर्य मुरारी का कोई हाँ एक है, कोई राक्षस था दैत्य दान, वो वर ले लिया था शिव का उपासक, तो शिव से वर लिया कि मैं जिसको स्पर्श कर दूं हृदय से,
हृदय में हाथ लगा
और जिसको हृदय में ऐसे हाथ छू दूं वो मर जाए। तो शंकर जी भगे, विष्णु को उन्होंने प्रार्थना की, तो विष्णु आए और शंकर जी भगे, विष्णु ने कहा जैसे कहां जा रहे हो, अत शिव जी की खोज, शिव जी या ब्रह्मा जी, ठीक याद है, खैर जैसे
शिव जी की
तो वो उनको खुलता हुआ जा रहा था भागा हुआ, तो उनको स्पर्श कर दूंगा और वो मर जाएंगे। तो विष्णु आ गए, उन्होंने कहाँ जा रहा है, आप तो परीक्षा कुछ करना है, नहीं वो उनसे लड़ने के लिए जा रहा है, लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा जैसे तुम हमसे लड़ेगा, नारद जी ने उनको भेज दिया था उनको लड़ने के लिए उनसे, तो वो प्रभु जी मिल गए, कहे तू हमसे लड़ेगा, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई के लिए तैयार था। प्रभु जी ने कहा तू हमसे लड़ेगा तो हम आपसे लड़ने के लिए आए, आप यही बात दीजिए हमसे लड़ो। तो प्रभु जी तू क्या लड़ेगा, क्यों तो हमको देख करके तुम्हारा ये धर 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 कर रहा है, कम कम हो रहा है, इसलिए तुम नहीं लड़ सकते, कहाँ मेरा हाथ जाए कम, तो देखो हाथ देख करके, हमने देख रहा हूँ ये तुम्हारा धर करता है। तो वो कहा जी नहीं, तो वहाँ देखने गया ये है मूल, किंतु इसका सार वही है, संसारिक आसक्ति ही मूल है, उसको प्रभु के दर्शन से और उनकी कृपा से ये सब दूर हो जाता है। यहाँ पर क्या है, पतियों के प्रति उनका जो अनुराग है, कृष्ण ने चोरी कर लिया उसके, वो अरी है किसके, समुद्र के, उनका आसक्ति कहाँ था, समुद्र की तरफ में जा रहे हैं, और उनकी धारा को मोड़ करके कृष्ण की तरफ, हम लोगों का भी संसार में ही जा रहा है, या जा रहा था या भी जा रहा है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं ये कृष्ण की कथाओं के द्वारा, महापुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से, हम लोगों की भी धारा मुड़ जाए कृष्ण के तरफ में, इसीलिए ये सब हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी बड़े जगत के उपकार, उन्होंने देखा जगत काम की तरफ में धावित होता है सबसे अधिक, विशेष करके कलयुग में, इसलिए उन्होंने कहा कि यह काम कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है, उनसे मनोहर कोई नहीं है, उनसे मधुर कोई नहीं है, यह हृदय उनको क्यों नहीं देता, इस भाव से तुम भजन करो। पहले सखरस का भजन था, शांत रस का था, शांत रूप में बड़े बड़े ऋषि लोग सब सतयुग से ही आराधना करते, दशरस से हनुमान इत्यादि ये सब लोग त्रेता युग से भी करते थे, ये सब भजन था, वात्सल्य रस से भी कुछ था भजन, इस भजन की कोई परिपाटी नहीं थी, लोग कृष्ण की प्रेयसी बन करके कृष्ण का भजन करें ऐसा नहीं था, जीव मात्र के लिए सुलभ नहीं था, केवल कुछ श्रुतियों के लिए था, दंडकारण्य के कुछ विशेष ऋषियों के लिए, सबके लिए जनरल रूप में नहीं था, महाप्रभु जी ने आकर के सबको धर्म दिया, यहां तक कि पशु पक्षियों को भी वो प्रेम दिया, पशु पक्षियों को कृष्ण नाम सुनाया, और सुनाने से फिर वैष्णव का संग मिला, और वैष्णव का यदि राय रामानंद का संग किसी को मिलेगा, राय रामानंद का नाम मिले, वो जो रायमंद का जो हरि कथा सुना था उन्होंने सुना, उनसे भी मिल जाए गदाधर पंडित का, तो उसको क्या होगा, कौन सा प्रेम मिलेगा, इसलिए महाप्रभु के संगी को संग करने से संभावना उसी बात की अधिक है। इसलिए उनकी आसक्ति कृष्ण ने ग्रहण कर लिया, नदियों को, नदियों का यह परम सौभाग्य है, हम नदियां भी नहीं बन सके, दुर्भाग्यवश वेणु श्रवण के भी अयोग्य है, नदियां योग्य हैं, पशु पक्षी और ये जितने का नाम गिनाया सभी लोग योग्य हैं, केवल हम ही ऐसी दुर्भाग्यनी हैं जो घर में बंद हैं, हमारे बहुत से प्रतिबंधक हैं, एक तो लज्जा, एक तो मान, एक कुल का धर्म, पति ननद सास गुरुजन सब इसके विरोध, तुम नहीं सुन सकते, सभी सुने दूसरी बात, यदि मान लिया कि हमने कहीं शरण भी कर लिया है तो मोह के बस में वही मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे, हम आगे जाकर के कृष्ण का रूप दर्शन नहीं कर सकते और अच्छी तरह से उसको सुन नहीं सकते, मोह देखा। इसलिए कृष्ण की सेवा से हम लोग वंचित रह जाते हैं, उसका सुजोग नहीं मिलता। पति पुत्र सेवा आदि गृह कर्म में ही हमको फुर्सत नहीं है, भजन करें फुर्सत नहीं, घर के कामों में ही व्यस्त हैं। हम लोग ही सब छोड़ करके आए हैं, किंतु सोने से, आराम से, कुछ थोड़े बहुत काम से फुर्सत नहीं है, जो 100,000 नाम का है फुर्सत ही नहीं। तो और लोगों को संसार में जो रहते हैं उनकी तो बात है, विशेषकर गृह कर्म से एक तो विराम नहीं, विशेषकर प्रकट रूप में भजनों की वेशभूषा धारण करने का नैपुण्य भी नहीं है। भजनोचित वेशभूषा अथवा नदियों की भांति हमारी दीर्घ बाहुएं नहीं है जो कृष्ण के चरणों में उपहार दे सके, स्वच्छंदता नहीं है, विघ्न बाधाएं हैं, हम अपने हृदय को नहीं दे सकती क्या? यहाँ पर भजन माने सेवा, सेवा के उचित जो वेशभूषा है हम धारण करके कृष्ण के समीप जा करके जा सके, ये संभव नहीं, कृष्ण के निकट हम नहीं जा सकते, वैसे वेशभूषा हम धारण नहीं कर सकते। अर्थात कमल का उपहार दे करके और कृष्ण के निकट में जा करके हम सबके सामने में उपहार दे सकते हैं, यह संभव नहीं, ये है भजन, भजन माने सेवा। अथवा उनके तरह न तो दीर्घ बाहु है, न वैसे उपहार हैं, न स्वच्छंदता है, वैसा कोई भी सुयोग इनके पास नहीं, इसलिए हम यदि मर करके नदियां भी हो जाएं और कृष्ण की सेवा कर सकें तो हमारा जन्म आगे। इतना नहीं तो भजन के लिए आवेग होना चाहिए, नहीं? आवेग बने क्या है हम कब भजन करें, इतना तो उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा रहित भजन और संबंध ज्ञान रहित भजन का अधिक मूल्य नहीं है। आवेश के सहित जो हरिनाम होता है, आवेश के सहित माने क्या, अंतर्मुखी होकर के कृष्ण से कोई संबंध रख करके जो नाम होता है वो नाम नाम है, उससे भी आसक्ति भी दूर हो जाती है, सब कुछ दूर हो जाता है, संसार में अब कहीं भी रुचि नहीं होती है। इसे संबंध ज्ञान के सहित में भगवान का प्रयोग,
देखने में कल्याण होता है किंतु कल्याण में ही अकल्याण होता है। भगवत संबंध विहीन जितने भी कार्य, जितना भी लोग समूह के कल्याण के लिए हो जाए, ऊपर से मालूम होता है ये कल्याण जैसा, किंतु उसमें यथार्थ कल्याण नहीं। वैष्णव की दया होती है, भागवत की दया होती है, अमंग दया दया, जो कभी भी कोई बुराई को पैदा नहीं करता, अमंद माने अकल्याण उससे नहीं। संसार में यदि दान अपात्र में चला गया, किसी का कोई उपकार किया यदि अपात्र है तो उससे मंगल के बदले अमंगल हो, संसार का यही कार्य ही। एकमात्र भगवान और भक्तों की दया में कोई अकल्याण नहीं। वैष्णव लोग क्या कल्याण करते हैं, लोगों की चित्रवृत्ति को किसी प्रकार से भगवान के तरफ में मोड़ देते हैं, ये उनका स्वरूपगत दया है, इसे कोई भी अमंगल नहीं होगा। और संसार की दयाएं हैं, सब दया में कुछ अकल्याणशिकार है। किसी की शादी करा दी, मैंने क्या किया, उसका तो कल्याण ऊपर से मालूम हुआ, किंतु हुआ क्या, और बंधन में गया। भक्ति राज्य में जो कुछ था भी वो सब दूर हो गया। इसी तरह से एक मान लिया बहुत अत्याचारी व्यक्ति है, गुंडा टाइप का व्यक्ति है, वो असाध्य रूप से मर रहा था और उसको दया करके बचा दिया, तो वो जीवित होकर के क्या करेगा,
जीवित करेगा
और जगत का अकल्याण, तो उसका दायित्व दूर का हुआ जो अच्छा। ये संसार के समस्त द्वाराओं में जारी शुरू किया है। आज मान लिया किसी को आंख बना दी, वो यदि आदमी अच्छा है तो जगत का कल्याण हुआ, उसका भी कल्याण। आदमी आजकल अच्छा होना, भले मानुष होना बहुत कम है, जो डकैत है लोगों को जान से मारता है, जैसे कि अभी पंजाब में कश्मीर में हो रहा है, लोगों को ऐसे ही कत्ल कर देते हैं, गाली या मूली और गाजर की तरह, और उनका आंख अंधा हो गया तो ठीक थे, पाप नहीं कर रहे, किंतु आंखें होने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर वैसा ही कत्ल करेंगे, इसलिए उसमें अमंगल। संसार में जितनी भी दया है इसी कोटि के अंतर्गत, केवल भगवान के की सेवा में यदि एक जीव को भी नियुक्त कर दिया जाए, तब प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जो वो कोटि कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा उनकी रक्षा करने की अपेक्षा एक जीव को मोड़ दिया भगवान के तरफ में, उसका कल्याण नित्य काल के। अभी मान लिया कि जैसे उसको भोग कुछ भोगना है, अभी हमने उसको ठीक कर दिया, फिर दूसरे जन्म के लिए क्या किया, फिर वैसा ही होगा। और एक जीव को भगवान के तरफ में मोड़ दिया है, मालूम हुआ इस जगत में तो कुछ लाभ नहीं हुआ, किंतु उसके जन्म जन्मांतर के लिए वो, इसलिए लोगों के लिए बृहद भगवता चैतन्य चैतन्य श्रीमद भागवत जीवों के नित्य स्वरूपानुबंधी दया का परिचायक है। कल हमने नदस्तदार्थपदारित किंतु एक चीज और याद रखना चाहिए, विशेष करके मठवासी ब्रह्मचारियों, चोरी किसको कहते हैं, मतलब ब्रजानंद जी, चोरी माने किसको कहते हैं, चोरी की परिभाषा क्या है,
किसी की वस्तु को बिना पूछे लेना चाहिए।
हाँ, तो ये तो होना चाहिए ना, किसी ये मैं लगा करके तरह घुमाऊँ, बहुत ठंड पड़ती, ये अच्छा है ना, मांग करके लेना चाहिए ना, क्यों लेगा नहीं लेना चाहिए, मांग करके भी दूसरे की चीज क्यों लेंगे, यदि वैसी चीज है तो मांगने मांग करके ले जाए। उनका कोई कपड़ा जूता व्यवहार की चीज नहीं मांगनी चाहिए किसी से, ये साधु का या ब्रह्मचारी का पहला कर्तव्य है, अपना बल्कि सर्वस्व दूसरे को दे दे, किंतु दूसरों का नहीं, दूसरों की सेवा की भावना सब समय ब्रह्मचारी। लाख रुपया किसी का पड़ा हुआ है, मत छुओ, उस स्थान पर रहने दो, मत छुओ, तनिक भी लोभ न हो, अधिक से अधिक वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको कह सकता है, जैसे वहाँ पर की पड़ेगी तो मत लो, चाहे लाख रुपया पड़ा है, चाहे एक पैसा पड़ा है, कुछ कुछ भी लेकर के अपने पापड़ में रख दिया या अपने कहीं इधर का उधर करके मत करो, उसको जैसे तैसे उसको पड़ेगा, ये मठ राशि का पहला कर्तव्य। दूसरा, उसको सहिष्णु होना चाहिए,
जो मठ में आते हैं सुनते हैं हरि कथा उनको प्रणाम महाराज की भांति सहिष्णु होना चाहिए, चाहे लड़कियां हो लड़के हो महिलाएं हो पुरुष। यदि कोई सहिष्णु नहीं होगा भजन नहीं हो सकता, कोई संसार का काम ही नहीं वो कर सकता है। ये देखो सहिष्णु विशेष करके सुख दुख उनको सहने की, इसलिए बतलाया भागवत के प्रारंभ में तत्तेन कंपां सुसुमिच्छमाण झुंझान एव आत्मकृतम पीपाकम एव आत्मकृतम पीपाकम। हमको जो दुख हो रहा है कोई कष्ट हो रहा है इसके लिए दूसरा दाई नहीं है, भगवान की वजह से हमको दुख हो रहा है, भगवान ने हमको बिना विचारे ही ऐसा दुख दे दिया, ना कोई व्यक्ति है जो हमको दुख दे रहा है, उसके लिए मेरा कर्म दाई है मैं दाई, इसलिए उसे बेकार का झगड़ा मनोमालिन्य मत करो। विशेष सत्य मठ में अपने सुख दुख के लिए हम दाई हैं, इसको सहते हुए आराम के साथ में हंसते हुए इसको झेल करके हम भगवान का क्या करेंगे, सब समय प्रणाम प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। क्या है प्रत्ययुगम पाम सुषिम क्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाक इदघन नमस्ते जीवेत जब मुक्ति जिसके पद में है वो भक्ति का अधिकारी बन जाता है, प्रेम भक्ति का अधिकारी बन जाएगा। यदि ऐसा कोई है जो कुछ भी खराब विपत्ति आपत्ति सुख दुख हो रहा है ये मेरे कर्मों के वजह से हुआ है, और जो उत्तम वाले भक्तों में ये साधारण लोगों के लिए, और उत्तम कोटि के जो भक्त हैं मध्यम अधिकारी विचार करने वाले या उत्तम अधिकारी वो क्या सोचेंगे, हमने भगवान का नाम किया है, आभास में भी किया है जैसे भी किया है आभास जरूर हुआ है, तो आभास के द्वारा निश्चित रूप में हमारे पाप सब कर्म कट जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करता तो मध्यम अधिकारी है, तब हमारा जो ये प्रारब्ध कर्म है जो जीवित रहे किस लिए, भगवान ने अनुग्रह कर दिया। वैष्णव लोग जो हैं उनका कोई भी प्रारब्ध कर्म नहीं है उनके दुख में, ये सब प्रभु ने उनको जीवित रहने के लिए प्रारब्ध कर्म जैसा रख दिया है जिससे वो साधन भजन कुछ कर सके और उनको दीनता आए दैन्यता आए, इसलिए कर्मफल से वो भोग नहीं रहे। वैष्णव हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ये बात ठीक है, हमको जो रोग होता है अभाव और दुख होता है वो हमारे अपने कर्मों से, और वैष्णव के जो देखे जा रहे हैं वो किस लिए, उनका तो नाम करने की वजह से हरि कथा सुनने से भक्ति करने से सब कर्म खत्म हो गए, केवल प्रभु जी ने उनके अपने इच्छा से उनके प्रारब्ध कर्म अवशेष रख दिए हैं, किस लिए भजन कर सके, नहीं तो जीवन नहीं रहेगा तो भजन कैसे, इसलिए उनको इस रूप में देखना चाहिए। जो इस प्रकार से चलता है ना वो भक्ति पद का अधिकारी बन जाता है, कैसे कैसे अधिकारी बनता है, जैसे बेटा के लिए पिताजी अपनी संपत्ति के लिए रजिस्ट्री करके जाते हैं, नहीं वो बेटा हो गया ये इसलिए उत्तराधिकारी है, और मालिक कब हो जाएगा, यदि जीवित रहा तो मालिक हो जाएगा और यदि मर गया तो जीवित या मुक्ति पद, जो जीवित है वो जीवित रहना है। भक्ति राज्य में क्या जीवित रहना है, अपराध अपराध नहीं करना है ये जीवित रहना है, यदि अपराध किया तो भक्ति पद का अधिकारी नहीं होता है। देखो अच्छी तरह से देख सुन करके हमको ऐसा ही चलना, यदि भक्ति लाइन में हम लोग जीवित रहे कैसे निरअपराध करके वैष्णव का भागवत का भगवान के चरण में किसी प्रकार से तन मन भी इत्यादि से कोई अपराध नहीं किया, निंदा अवज्ञा नहीं, तब तो बच जाए यही बुद्धिमत्ता है, और नहीं तो हम लोग, इसलिए हम लोगों को विशेष करके गृह त्यागी लोगों को प्रत्येक विषय में आदर्श होना चाहिए। बाहर के लोग, भीतर के लोग देखें, हजारों रुपया पड़ा है कोई नहीं छुआ। हम लोग में पहले ऐसा देखता था, बाथरूम में कोई कुछ काफी रुपए 10,000 रुपये रख करके स्नान कर रहा है, एक आदमी खड़ी रख करके स्नान कर, जब वो लौट करके आया और फिर चला गया, इतने कितने आदमी आए गए, तो ब्रह्मचारी लोग अच्छे थे, किसी ने नहीं उठा, अंत में हमको लेकर के दिया। दो दिन के बाद में वो घबराया हुआ आया, तो मैंने उसको दे दिया, तो ऐसे ही ब्रह्मचारी लोगों का मन, नहीं तो परमार्थ कैसे हो, यदि अपना चरित्र सुधारने की चेष्टा हम लोगों के करें, ऐसा नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे हो, ऐसा सदाचार लंपत करके चलना चाहिए, ऐसा सत्यवादी होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, किसी का कुछ नहीं छुएंगे, विशेष करके वैष्णवों का, कोई व्यवहारिक चीज भी नहीं लेंगे। आजकल तो ऐसा जिसका जूता जिसका चप्पल होता है उठा लेते हैं, गमछा किसी को ले लेते हैं, किसको मालूम नहीं होता है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले ये साधारण आचार होना चाहिए, रसोई घर में कोई ऐसे बिना पैर छुए धोए तो मत मत खुश जाओ, ठाकुर घर में भी ऐसा नहीं, प्रणाम करने के लिए आए तो पवित्र होकर के ठाकुर जी के सामने पवित्र होकर, रसोई घर में पवित्र चित्त वृत्ति से, ठाकुर घर में जाने के लिए क्रोध यदि है तो मत जाओ, क्रोध को दूर करके जाओ, मन खराब कर